ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थोड़ी सी और शक्तिशाली बोलिए ना, ओम शांति। अब मजा आ गया। तो आप सब इस ज्ञान सरोवर, बहुत सुंदर ज्ञान सरोवर का ये जो प्रांगण है, इस प्रांगण में साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स विंग के कॉन्फ्रेंस के इस इनसाइट सेशन में आप सबका बहुत दिल से, तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम कल से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, आगे भी और भी दो दिन बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेगा कि बहुत हम फ्रेश होकर के जाएंगे अपने अपने स्थान पर। तो मैं अभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो फूलों से और बुके से हमें स्वागत करेंगे, बैजेस से। सभी तालियां बजाते रहेंगे और स्माइल करते रहेंगे। आप किसके घर आए हैं, किसके घर आए, किसके घर आए? हाँ जी, हाँ, परमात्मा का घर सो अपना घर। अपने घर में आए हैं तो अपने घर में अपने ही अपनों से अपना स्वागत। आज का बहुत सुंदर टॉपिक है एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है इसका? कृतज्ञता का भाव, थैंकफुल होना, शुक्राना करना। हम शुक्रिया करते हैं, हम शुक्रिया करते हैं, सभी को शुक्रिया करते हैं और सदा करते हैं, सदा करते हैं, यह इसमें नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि जिंदगी का सफल होने का यही तरीका है हमें हर एक को थैंक्स करना, शुक्रिया करना। लेकिन हमने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं, वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, अपने आप से शिकायत करेंगे, परमात्मा से शिकायत करेंगे, सबको, सबसे शिकायत होती उनकी। कोई ऐसे है, हमारी होती है, रहती है, नहीं आपसे शिकायत कैसे करते हैं? मैं तो कुछ हूं नहीं है, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। अपने आप से शिकायत करना, हम ये हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, अपने आप से अच्छा पॉजिटिव थॉट क्रिएट नहीं करते, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। अपने आप से शिकायत करना आज से बंद करना पड़ेगा। फिर कई लोग परमात्मा से शिकायत करते हैं, परमात्मा ने मुझे दिया क्या है, सबको दिया परमात्मा ने, दिया कहते फलाने को तो ज्यादा दिया है, मेरे को तो कम दिया है। इवन हम देखते हैं कि बच्चे भी आजकल, देखिए बच्चे भी क्या कहते हैं, हम भगवान को याद नहीं करते, मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर जाना वेस्ट है क्योंकि जो करना हमें करना है। वो तो बात तो ठीक है, जो करना हमें करना है, लेकिन उस चीज को करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए। वो शक्ति कौन देगा? ऑलमाइटी देगा ना। तो उनका हमें शुक्रिया जरूर करना चाहिए, हम शुक्रिया करते नहीं हैं। फिर और किसे शिकायत रहती है? समाज से शिकायत रहती है। हमें समाज को देना चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं, समाज से लेने की इच्छा रखते हैं, हमेशा एक्सपेक्टेशंस, देने की भावना नहीं है। वही समाज, देश, हाँ, विश्व, हाँ, विश्व की बात चल रही है ना अभी, समाज देश भी एक लिमिट में आ जाते, एक हद में आ जाती है। हमें विश्व को देना है, देने की भावना, दातापन की भावना रहेगी तो कभी भी आपके जीवन में शिकायत नहीं होगी, ग्रेटिट्यूड बनी रहेगी हमेशा। और हमने देखा प्रकृति से भी हम लोग शिकायत करते हैं, मैं सोच रही थी, देखिए प्रकृति कितना दे रही है। हम इस बात को समझते भी कलयुग है, समझते हैं कलयुग का अंत है। अभी आप लोग आगे मेडिटेशन के क्लासेस में सुनेंगे कलयुग का अंत है। आप सोचिए कलयुग के अंत तक भी प्रकृति हमें दे रही है, दे रही है। आप जहां बैठे हैं, हम जहां जिस माइक से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सब प्रकृति की देन है, अभी तक भी दे रही है। देखिए प्रकृति कभी हमसे लेने की इच्छा नहीं रखती, देने की भावना। कभी भी नदियां अपना अपना पानी नहीं पीती नदियां। वृक्ष फल नहीं खाते, वृक्ष बड़ा होकर के फल देता है, किसको देता है, किसको देता है, हमें देता है। आप सोचिए हम एक फल के पेड़ को पत्थर फेंकते हैं तो भी हमें वृक्ष क्या देता है, फल देता है। अगर हम किसी को, हमें कोई किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, पत्थर जैसी बात बोल दी, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, हाँ हम क्या करते हैं, हम वही पत्थर उठा के या तो फेंक देंगे, फिर उसके साथ साथ मुख से भी पत्थर जैसे बोल बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रकृति का हम दोहन करने के बावजूद भी प्रकृति हमें दे रही है, तो प्रकृति का भी हमें शुक्रिया करनी चाहिए। जिंदगी में कभी भी शिकायत मत करो, शिकायत कभी मुस्कुराने नहीं देती है। इसलिए एक बहुत एक सुंदर कहानी है, एक संत हुआ करते थे। संत की बात भगवान से होती थी, बहुत अच्छी तरह से उनकी भगवान से होती थी बात। तो एक बार ज्ञान चर्चा कर रहे थे तो एक अमीर व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, महात्मन मुझे एक बात आपसे कहनी है। तो उसने कहा, बोलो। आपकी भगवान से बात होती है तो मेरी भी एक बात सुना दो भगवान से। तो उन्होंने, महात्मा जी ने कहा कि बोलो कौन सी बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है, मुझे अभी भगवान को बोलना मुझे अब नहीं चाहिए, बंद कर दो मुझे, मुझे चाहिए नहीं, इतना दिया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, भगवान को अर्जी डाल दूंगा मैं। फिर सामने एक और गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा, महात्मा जी मेरी भी बात सुन लो, सुनाओ, मेरी भी अर्जी भगवान के सामने डाल दो। तो उसने कहा कि देखो, ये तो अमीर व्यक्ति है, और भगवान ने मुझे क्या दिया, एक कपड़ा ही तो दिया मुझे, और रहने के छत भी नहीं है, खाने के लिए भी मैं बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके खाना इकट्ठा करता हूं, और उसके बाद मुझे खाना मिलता है, तो भगवान ने क्या दिया, कुछ तो दे दें। ये भगवान, भगवान को बोला कुछ तो मुझे मिल जाए, कुछ तो दे दें। तो उसने कहा ठीक है, ये भी मैं भगवान के सामने सुना दूंगा। तो कुछ समय के बाद भगवान जी से बात हो गई उनकी, महात्मा जी से, महात्मा जी की, और सुन करके वापिस आए। भगवान जी ने अमीर व्यक्ति से कहा कि मैं आपका मैसेज लाया हूं। तो अच्छा, बड़ा खुश हो गया अमीर व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या मैसेज मिला मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं चाहिए ना जिंदगी में। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान जी ने ये कहा कि आज से आप भगवान का शुक्रिया करना बंद कर दो, शुक्राना करना बंद कर दो, भगवान का थैंक्स करना बंद कर दो, भगवान का ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मुझे भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है जो मेरी 21 पीढ़ी बैठ करके खा सकते हैं, इतना मुझे भगवान ने दिया है, और मैं भगवान का धन्यवाद नहीं करूं, शुक्रिया नहीं करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है। फिर गरीब व्यक्ति को बोला कि भाई आपके लिए भी मैं मैसेज लाया हूं। तो उसने कहा कि आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ना, तो कहते मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज से आप भगवान का शुक्रिया करना शुरू कर दो, तो आपको सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। जो आपको चाहिए ना सब परमात्मा दे देगा। लेकिन मैं कैसे करूं, मैं कैसे शुक्रिया करूं, इतना जीवन मेरे जिंदगी की 50% आयु खत्म हो गई और मुझे कुछ मिला नहीं है, और मैं भगवान का कैसे शुक्रिया करूं? ये तो मैं नहीं कर सकता। भगवान मुझे कुछ दे तो मैं शुक्रिया करूं ना। तो आप सोचिए इससे क्या होगा, गरीब गरीब रह गया और अमीर अमीर बनता गया। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम परमात्मा का दिल से शुक्रिया करते हैं, दिल से थैंक्स करते हैं, तो जीवन में हम जो चाहे कर सकते हैं। जो आपको प्राप्ति चाहिए वो परमात्मा करा देंगे। और हमने देखा है कि हमारी दादी जानकी जी, जो हमारे फॉर्मर चीफ, वो 104 साल की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। वो हमेशा कहती थी कि किसी से इच्छा मत रखो और हमेशा थैंक यू बाबा बोलो। हम परमात्मा को बाबा बोलते हैं। बाबा मीन्स फादर, बाबा माना पिता। तो परमात्मा को, शिव बाबा को कहते कि दिल से थैंक्स करो, थैंक्स गॉड, थैंक यू बाबा, थैंक यू परमात्मा, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनको थैंक्स करना शुरू कर दो। यही बहुत सुंदर मेडिटेशन है। जब आप थैंक्स करेंगे ना दिल से, तो आपका दिल बड़ा शांत रहता है, मन बड़ा शांत रहता है और जीवन में खुशी बनी रहती है। तो इसीलिए कभी भी किसी से शिकायत नहीं करनी है। जो शिकायत करता है वो कभी मुस्कुराता नहीं है। हमेशा जो प्रश्न करता है, प्रश्न चित्त जो होता है, वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। तो इसीलिए आज से सबको, चाहे आपके साथ गलत व्यवहार भी करें, आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोले, तो भी आप उनका शुक्रिया करना शुरू करें। ये तो बड़ा मुश्किल ही कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कम से कम आपकी इम्यूनिटी का तो बता देगा। अगर आपके लिए उसने गलत बोल दिया, कुछ भी बोल दिया और आप तुरंत रिएक्ट कर गए, तुरंत आपको गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब आप अंदर से वीक हैं। आप अंदर से वीक हैं, कमजोर हैं। अपने आप को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। तो उनका थैंक्स करना चाहिए कि नहीं करेंगे? सोच के हाथ उठा रहे हैं, करेंगे? आज से करना शुरू करिए। हर सिचुएशन में हमें सीखने को मिलता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को सोचती हूं कि परिस्थितियां और व्यक्ति हमेशा आपको आगे बढ़ाते हैं। परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों में हमें सीखने को मिलता है, और व्यक्ति भले वो क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, लेकिन आपको भी उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए हमें इस जीवन में हमेशा शुक्रिया करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड को अपनाना है, थैंक्स करना चाहिए। अपने लिए भी थैंक्स, परमात्मा का भी थैंक्स, अपने लिए कोसना मत, परमात्मा का भी थैंक्स और किसका थैंक्स करेंगे, प्रकृति का भी थैंक्स और संबंधियों का भी थैंक्स। तो मैं बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ रही थी, हर पल मुस्कुराओ, क्या सुख क्या दुख, ना शिकायत करो ना कोई उदासी, जिंदा दिल से जीने की कला सीख लो, यही है आशा और दीपक। तो मैं समझती हूँ कि आज बहुत सुंदर टॉपिक है, और भी अच्छी बातें हम लोग सुनेंगे हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन जी से। आप ब्रह्मा कुमार स्वामीनाथन भाई जी हैं, आप 28 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में ज्ञान को अप्लाई किया है, और मेडिटेशन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप लाइफ कोच, गाइड, टीचर, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अभी आप लोग सुनेंगे ही उनका, कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस में आपने एड्रेस किया है, 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस में आपने एड्रेस किया है, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, कुछ विदेशों में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, और कई सारे पीएसयूज, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपने अपना लेक्चर दिया है, कई सारे आपको अवार्ड्स भी मिले हैं। तो आपको भगवान से गिफ्ट है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं, आपके बोल में क्लैरिटी है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ स्वामी नितिन भाई जी से कि इस विषय को और अच्छी तरह से हमारे सामने एक्सप्लेन करेंगे हमारे ब्रह्मा कुमार स्वामी नितिन भाई जी।
आदरणीय गिरिजा बहन जी एवं सभा में उपस्थित माय डियर वंडरफुल स्वीट डिवाइन वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स सखियां डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। इट्स अ ग्रेट प्लेजर एंड एन ऑनर फॉर मी टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सच नॉलेजफुल इंटेलेक्चुअल फुल ऑफ विजडम साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स। और आप इतना प्यार से यहाँ बैठकर सब सुन रहे थे। द टॉपिक इज अ वेरी वंडरफुल टॉपिक, इट्स ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। हमारी गिरिजा बहन ने सबको थैंक यू बोल दिया, तो मैं बैठ के ये सोच रहा था कि आप कौन सा बचा हुआ है। यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द टॉपिक, क्योंकि टॉपिक है तो आपके सबके साथ आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग। आप में से मेरे कितने भाई बहने हैं जो पहली बार साइंटिस्ट इंजीनियर्स के निमंत्रण से ज्ञान सरोवर पहुंचे हैं, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। वाओ, वेरी नाइस। तो चलो साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग से ही ग्रेटफुलनेस स्टार्ट करते हैं। आप सबको मैं देखता हूं तो मुझे 28 वर्ष का दिन याद आता है जब मैं इस ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में पहली बार आया था। आई वॉज ए यंग डिजाइन इंजीनियर, दो तीन जॉब शिफ्ट कर मुझे जो जॉब चाहिए थी वो मिल भी गई थी। आई वॉज वर्किंग इन मुंबई, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में मुझे लग रहा था देर इज सम शॉर्ट सर्किट हैपनिंग। क्या शॉर्ट सर्किट है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इट वॉज एट दैट टाइम मुझे इस विंग की तरफ से निमंत्रण मिला। और जब मैं यहाँ पहुंचा 1996 में, और तीन दिन के इस सेशन में मैंने ये महसूस किया कि हम लोग इंजीनियरिंग में बहुत डिज़ाइन प्रोडक्शन की सब बात करते हैं और अप्लाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन का डिज़ाइन मुझे कैसे करना है, मुझे यहाँ से सीखना पड़ेगा। सो द थ्री डेज ऑफ वंडरफुल ब्यूटिफुल डेज टॉट मी हाउ टू डिज़ाइन माई लाइफ एंड डिज़ाइन माई डेस्टिनी ऑल्सो। वर्तमान को मैं कहाँ ठीक करूँ और भविष्य को मैं कैसे ठीक करूँ। सो माई जर्नी बिगैन 28 ईयर्स बिफोर। इसलिए आप भी यहाँ पर आए हैं तो इस पर जरूर चिंतन करना। मेरा वर्तमान तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे अपना भविष्य, जैसे दीदी ने कहा, देश समाज प्रकृति का भविष्य को कैसे बनाना है। सो द जर्नी स्टिल कंटिन्यूज फॉर मी एंड अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्नोलॉजी विच विल हेल्प अस टू डिजाइन इज कॉल्ड एस राजयोग। तो यहाँ पे जो विधि सिखाई जाती है वो राजयोग। इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र में अगर किसी के भाग्य में राजयोग हो गया तो कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। इसलिए आप जैसे यहाँ आज सुबह बैठ कर राजयोग का पहला सत्र हमारे आदरणीय शीलू दीदी जी से सुन रहे थे, उसी समय पर मैं इस नीचे के मेडिटेशन हॉल में आई वॉज स्टिल स्टडी। सो आई एम सो हैप्पी टू टेल यू आई एम स्टिल अ गॉडली स्टूडेंट लाइक ऑल ऑफ यू। और हम ये राजयोग कैसे करना है उसकी हम पढ़ाई पढ़ रहे थे। और ये पूरे विश्व में जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं वो हर दिन ये मुरली क्लास चलती है मॉर्निंग 7 to 8 AM। आज का जब मैं मुरली सुन रहा था, परमात्मा के महावाक्य सुन रहा था, तो परमात्मा बाबा ने एक बहुत सुंदर जिक्र किया और वो बादशाह की बात बताई। राजयोग में दो शब्द है, एक है राज और दूसरा है योग। जब हम कुछ राज को जान लेते ना तो हम राजा बन जाते हैं। तो आज की मुरली क्लास में वो बादशाह की कहानी थी, तो आई विल ऑल्सो टेल दिस वंडरफुल स्टोरी। इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉमन स्टोरी इन भारत। राइट, राजा और चार रानियों की कहानी। कहानी ऐसी है कि एक राजा था जिनकी चार रानियां थी। उसकी जो सबसे छोटी रानी जो थी, राजन जो था ना, उसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता था। तीसरी रानी जो थी वो बड़ी सुंदर थी, तो राजा कभी भी दूसरे देश का भ्रमण करते थे तो वो तीसरी सुंदर रानी को लेकर जाते थे। बहुत अच्छा भी लगता था कि माय रानी इज सो ब्यूटीफुल। दूसरी रानी जो थी बड़ी बुद्धिमान थी, शी वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो राजा को अपने राज्य कारोबार में जब भी कोई चैलेंज आता था तो राजा वो दूसरी रानी को बुलाता था, उसे सलाह मशवरा करता था। एंड बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, द सेकंड क्वीन यूज्ड टू गिव वेरी क्लियर कट सॉल्यूशंस टू द किंग। पहली रानी सबसे बड़ी रानी थी, राजा को उस रानी के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। कुछ समय के बाद राजा का तबीयत खराब हो गया, तो राज्य वैद्य ने राजा को देखा और कहा, राजन आपके लिए वक्त बहुत कम है, यू हैव गॉट लिमिटेड टाइम। तो राजा ने वो चौथी रानी को बुलाया और कहा, रानी, राज्य वैद्य ने कहा कि मेरे लिए वक्त बहुत कम है, मैं तो हमेशा आपका साथ चाहता था, तो आगे की यात्रा में भी आप मेरे साथ रहोगे ना? तो चौथी रानी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं राजन, ये आपको अकेला ही जाना पड़ेगा। तो राजा बड़ा दुखी होता है, तो राजा तीसरी रानी को बुलाता है, कहता है, रानी, जब भी मैं किसी राज्य भ्रमण करता था तो यू ऑलवेज यूज टू अकंपनी मी, आई यूज टू फील वेरी गुड अबाउट इट। अब मैं आगे की यात्रा कर रहा हूं तो आप मेरे साथ भ्रमण के लिए निकलोगे ना? बोला, नहीं राजन, वो आपकी यात्रा है, आपको जाना है, मैं कैसे आपके साथ आ सकती हूं। तो राजा फेल्ट वेरी हर्ट, तो राजा वो दूसरी रानी को बुलाता है, कहता, रानी, जब भी मेरे राज्य कारोबार में कभी कोई चुनौती आती थी तो आई यूज टू कंसल्ट यू एंड यूज टू गिव वेरी गुड आंसर सॉल्यूशंस। मेरा जीवन का अपना पर्सनल व्यक्तिगत चुनौती बहुत हो गया है, आई एम श्योर यू विल हेल्प मी। तो रानी पूछती है, राजन आपका प्रॉब्लम क्या है? बोला, राज्य वैद्य ने कहा वक्त बहुत कम है, चौथी रानी नहीं आ रही है, तीसरी रानी नहीं आ रही है, आप तो जरूर आओगे ना? तो दूसरी रानी एक मिनट सोचकर कहती है, ठीक है राजन, मैं आपको शमशान घाट तक छोड़कर आ जाऊंगी। वो राजा इतना दुखी होता है, तो फिर वो पहली रानी आती है और कहती है, राजन, इस आगे की यात्रा में मैं आपका जरूर जरूर साथ दूंगी। राइट, जोर से थोड़ा तालियां बजा लीजिएगा। तालियां क्यों बजाई, तालियां क्यों बजाई? ये और किसी राजा और रानी की कहानी नहीं है, ये हम सभी जो बैठे हैं ना, वी आर ऑल द किंग्स। राजयोग से हम राजा बनते हैं। हाँ, दूसरों पर राज करने की बात यहां नहीं कर रहे हैं। 28 years before I learned the most important technology that we should learn is स्वराज्य अधिकारी। मुझे अपने ऊपर राज्य कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा। तो आज सुबह के क्लास में आप सभी का राजा बनने का धीरे धीरे प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। राइट, राजा अर्थात हु इज द किंग, वी आर द किंग, आई एम द किंग, अर्थात मैं आत्मा राजा, आई द सोल इज द किंग। जब मैं पहली बार ये आत्मा के बारे में सुना तो माय इंटेलेक्चुअल माइंड द फर्स्ट थिंग आस्क्ड इज, वेयर इज द प्रूफ। हम लोग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में देखते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए देयर शुड बी अ पावर स्टेशन। सुबह से शाम तक हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इतना कर्म कर रहे हैं, इस शरीर को चलाने वाली वो पावर स्टेशन कौन सी है? एंड द पावर स्टेशन इज द सेल्फ, द सोल। फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या विज्ञान ने इसका प्रूफ ढूंढा है क्या? आज से 25-26 साल पहले हम लोग कहते थे वेयर फिजिक्स एंड्स मेटाफिजिक्स स्टार्ट्स। थैंक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स टुडे, आज के जमाने में फिजिक्स इज कमिंग वेरी क्लोज टू मेटाफिजिक्स। मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूं फ्रॉम द डोमेन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि हम जो संकल्प करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम डिसीशन लेते हैं, ये करने वाली सत्ता कौन सी है? राइट, और ये 3 मिनट के वीडियो में आपको पता चलेगा विच इज दैट एंटिटी विच एक्चुअली मेक्स द डिसीशन। लेट्स वॉच दिस स्मॉल वीडियो।
As strange as that may sound, it is being proven time and time again with the latest research and technology. Here's a BBC documentary from June 2010 that confirms this phenomenon.
I'm in Berlin to take part in an experiment designed to explore the source and timing of my decisions. I'm quite apprehensive because the results could have a profound effect.
To explain the source and timing of my decision.
There are some words that you have to catch.
Effect on how I live my life. They will reveal who is in charge of my decisions.
It will reveal who is in charge of my decisions.
Or an unconscious mass of grey matter that I have no control over.
So this is going to be looking at my brain.
Yeah, this is looking.
Another day, another scanner. The experiment is simplicity itself. I have to randomly decide and then immediately press one of these left or right buttons. At the same time, the scanner system records when my brain made the decision, and the computer when I physically press the button.
Okay, Marcus, we are ready to start.
The test didn't take long, and to be honest, it's not terribly exciting. But I'm hoping the results will be a bit more interesting.
In your case, up to 6 seconds before you make up your mind, we can predict which decision you're going to make.
6 seconds?
Vaigyanik keh rahe hain, 6 seconds before you thought about it, we were able to guess which button you are going to press. And 6 seconds is too long a time.
Absolutely, 6 seconds, yeah.
6 seconds? So I was conscious of making a decision to press my right finger down. And you're saying that 6 seconds earlier, my brain had already made that decision?
Exactly. So here we can show you how we did it. In this region, there's a pattern of brain activity that emerges before you make up your mind that tells us which way you're going to decide. And these blue regions, they get more active when you're going to choose left, and the yellow regions get more active when you're going to choose right.
That's a bit frightening. It sort of implies, therefore, my conscious decision.
These are all available in the YouTube. अगर आपको metaphysics और science के बीच में complementary role देखना है, तो ये videos को आप देखिएगा, और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि विज्ञान is very very close. Coming close to Adhyatma. तो एक काम करना, जब ये प्रोग्राम सबसे कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा ना, जब आप घर जाएंगे तो आपके बच्चे और फैमिली मेंबर्स आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, पापा है ना, माउंट अबू में जाकर आपका चेहरा इतना स्माइलिंग कैसे हो गया? तो आप कहना, बच्चे वो 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में ना हमारा पावर स्टेशन एक्टिवेट हो गया. पापा, व्हाट डू यू मीन बाय पावर स्टेशन एक्टिवेशन? तो आप कहना, बच्चे वहां जाकर हमें समझ में आया कि मैं कौन हूं. तो छोटू पूछेगा, पापा आप कौन हैं? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना, बड़े प्यार से बच्चे से पूछना, बच्चे आपको पता है आप कौन हो? तो छोटू पूछेगा, पापा मैं कौन हूं? तो बड़े प्यार से कहना. आप सभी कहिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा. सभी बोलिए, बच्चे बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए. अरे भाई डराओ नहीं ना, छोटू को हार्ट अटैक मत दिलाओ, थोड़ी मधुरता लेकर आइए ना. प्यार से बोलिए, बच्चे मीठे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर. हाँ, फिर छोटू पूछेगा, पापा फिर आप कौन हो? तो आप सभी जवाब दीजिएगा. सभी बोलिए, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. वो छोटू ना आपको देखकर मुस्कुराएगा, कहेगा, पापा ये मेरा एलकेजी का सिलेबस है, ये सीखने के लिए अब 3 दिन बाद है क्या? यस, ये ऑल बेसिकली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स. ये समझना बहुत बहुत जरूरत है. इटर्नल, इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल. 7th standard बेसिक फिजिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. मैं आत्मा राजा हूं. अब ये आत्मा रूपी राजा की चार राणियां कौन? ये चार राणियां कौन है, कौन कौन, ये जानना है कि इच्छुक है वो जरा हाथ उठाएं. आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिएगा. हाँ हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे आप उठे ना. और ये जो प्रोग्राम है ना, 5 है ना, 3 YouTube और 2 लाइव चैनल्स में जा रहा है.
साइंटिस्ट इंजीनियर सिंह का चैनल, ज्ञान सरोवर का चैनल, ब्रह्मा कुमारीज का चैनल, पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग चैनल, और बीच बीच में ऑडियंस को दिखाते रहते, आपके बच्चे देखेंगे पापा आप जाके वहां सो रहे थे सो प्लीज ना फिर वही संस्कार बच्चों में भी आएगा, फिर उसकी टीचर भी बोलेगी है ना आपका बच्चा क्लास में सोता रहता है, तो एकदम जागृत रहना ओके। चार रानियां कौन सी हम देख लेते, तो फोर्थ रानी इसमें आत्मा रूपी राजा मैक्सिमम टाइम बिताता है, दैट्स अ फिजिकल बॉडी, हमारा शरीर। जैसे ही आत्मा दो ढाई महीने में मां के गर्भ में आती है ना, तब से आत्मा का इस शरीर के साथ कनेक्शन है। योग मतलब संबंध, वियोग अर्थात बिछड़ना। तो ग्रेटिट्यूड कैसे रखेंगे, तीन चीज करना पड़ेगा एंड दैट्स योर हेल्थ। नंबर वन इज एक्सरसाइज करना, फिजिकल फिटनेस। नंबर टू इज भोजन एंड नंबर तीन इज गुड स्लीप। तो इस शरीर के प्रति अगर हमको ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता करनी है तो ये तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, आपको वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो अच्छा लगता है आप करिएगा, लेकिन जो भाई बहन राज्यों को महसूस करते हैं, दे विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल यू नो एन इमोशनल कनेक्शन विथ योगासन। योगासन करना बहुत जरूरत है। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राजयोग एंड योगासन। और थैंक्स टू यूनाइटेड नेशंस विच डिक्लेयर June 21st एज द इंटरनेशनल योगा डे। इस बार का जो योगा डे इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी एंड आई हैव गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम लंडन ऑन 20th and 21st of June। और बहुत खुशी की बात है कि फॉरेनर्स जो है वेस्ट, दे आर सो इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड योगासन एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, जो भारत का बहुत सुंदर देन है। मैं हर दिन फॉर सम टाइम, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे में भी जाना है तो अपने आप को तैयार भी करना होता है, तो आई स्पेंड अराउंड 45 minutes टू वन एवरी डे। समय की अपनी एक मर्यादा है, तो मैं काम करता हूं, मैं अपना जो योगासन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज आपको बताता हूं। एंड योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो जहान है। एक बार मैं इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहा था, तो सारे कैडेट्स बैठे थे, तो मैंने कहा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कमांडेंट वॉज वेरी हैप्पी, राइट आंसर, राइट आंसर। तो सभी अपने जहाज को थोड़ा सीधे बिठाइए, कुछ लोग का जहाज इधर उधर डोल रहा है, राइट, एकदम अलर्ट होकर बैठेगा है ना, क्योंकि वीडियो में आपको भी दिखाया जाएगा। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज विच वी स्टार्ट विथ एनी योगासन इज ओम की ध्वनि, और हमारा विद्यालय इनिशियल स्टेजेस पे इसको ओम मंडली कहा जाता था। फाउंडर फादर ब्रह्मा बाबा ओम की ध्वनि करते थे। ओम इज नॉट अ रिलीजियस कॉनोटेशन, इट इज अ स्पिरिचुअल कॉनोटेशन। ओम मीन्स द सेल्फ, आ उ और मा, ओम शांति, आचरण में शांति, उच्चारण में शांति, मन में शांति। तो ओम की ध्वनि करना है, और जब आप ये ओम की ध्वनि करेंगे तो गहरी श्वास भरना, धीरे से श्वास छोड़ना, राइट। लेकिन जब आप कर रहे हैं तो महसूस करना ब्रुकुटी के बीच में आप एक चमकता हुआ सितारा है। दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से बैठे, बस वील डू इट ओनली फॉर वंस बिकॉज द टाइम इज अ लिमिटेशन। रिलैक्स योर सेल्फ कंप्लीटली, गहरी श्वास भरे और ओम की ध्वनि करें। ओ relax now, just feel yourself at the center of the forehead, a point of light, man ke nano se apne aap ko ek adrishya urja ke swarup mein dekhiye, om shanti, राइट। तो जो भी आसन करते हैं धीरे धीरे करिएगा और एक एक महसूस करके करिएगा, बहुत तेजी से नहीं करना होता है। रिलैक्स, इजी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ओके। फर्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज जब आप शवासन पर लेट जाते हो, उसके बाद जब उठते हो ना, तो योगा गुरु कहते हैं कि तालियां बजाना चाहिए, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, सभी अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखें, इंडेक्स फिंगर लें, तीन बार टैप कर एक शब्द बोलना, पहले देख लेना, और पता क्या कहेंगे, वाह 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 जिंदगी वाह, वाह वाह कहना, दैट्स अ पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। हाँ सभी करिए, गिरजाबेन सभी लोग तो अच्छा कर रहे थे लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को मैंने देखा, पता कैसे कर रहे थे, वाह 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 जिंदगी में काहे का वाह वाह। सो दीदी विथ योर परमिशन, अगर मैंने किसी भी वैज्ञानिक या अभियंता को देखा या आर्किटेक्ट को देखा वाह 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 करते हुए, तो बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको स्टेज पर बुलाऊंगा, सारा विश्व आपको यूट्यूब में देखेगा, आपको गुलदस्ता बैज वैज लगा दूंगा, सबके सामने करना पड़ेगा। दीदी कैन वी डू दैट? हाँ, वेरी गुड चेयर पर्सन, परमिशन दे दिया। नहीं नहीं स्वामी भाई, सुबह 4 बजे उठे ना, आपको पता है निकोला टेस्ला अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, वो कितने बजे उठते थे पता है? 2:30, 3 AM। आप उनका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़िएगा, आइंस्टीन के बारे में हम जितना जानते उतना हम टेस्ला के बारे में नहीं जानते, राइट? आप उसका जीवनचर्या को देखिएगा, वो कहते 2-2.5 hours ऑफ स्लीप इज इनफ। अगर आपका मन बहुत रिलैक्स्ड है तो उतना बहुत अच्छा है। तो अभी हम फिर से करेंगे, सभी जागृत होकर करना, जोश के साथ होश होना चाहिए, आजू बाजू के जहाज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, सभी करिए बड़े खुशी से, वाह 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 जिंदगी वाह, अब लग रहा पावर स्टेशन एक्टिवेट हुआ। दो फिंगर लीजिए और कहिएगा वाह वाह, पहले से चालू होगा ये पावर स्टेशन एक्टिवेट, अब सुनो ना, वाह 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 मेरा परिवार वाह, करिए सभी। 3 लेकर कहिएगा वाह 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 मेरा देश वाह। 4 लेकर कहिएगा वाह 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 ये प्रकृति वाह। दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे वाह 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 वो परम रक्षक वाह। जोर से तालियां बजाइए, ठीक है? सो वन इज द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट, द सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फिजिकल बॉडी इज भोजन। तो आज मैं कहता हूं ये शरीर के प्रति अगर ग्रेटिट्यूड करना है तो हमारा भोजन सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन। एंड इन दिस वर्ल्ड मेनी ग्रेट पीपल, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो दा विंसी, पाइथागोरस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, कार्ल लुईस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राइट, महात्मा गांधी जी एंड स्वामी भाई, सब में एक विशेषता कॉमन, क्या कॉमन है? प्योर वेजिटेरियन। तो आज यहां पर आए हो ना, एक दृढ़ संकल्प करेगा। अगर हम वैज्ञानिक इस बात का चिंतन करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है, then you should read this. The researchers led by scientists at the Food and Agriculture Organization of the United Nations found that, last part, if you are shifting to a pure vegetarian diet, you are actually reducing, right, the carbon dioxide, the carbon monoxide. अगर आप 7 दिन नॉनवेज खाते हैं उसमें से 1 दिन अगर आपने प्योर वेजिटेरियन किया और अगर हर दिन आप सात्विक भोजन करते हैं तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण शरीर आपको बहुत प्यार से है ना शुक्रिया करेगा। तो एक है व्यायाम, दूसरा है भोजन, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू रिलैक्स अवर माइंड एंड दैट स्लीप, नींद, राइट? सबसे सुंदर सा गिफ्ट जो हमको मिला है, आई एम नॉट हियर टू एलैबोरेट ऑन स्लीप मैनेजमेंट, लेकिन आप लोग वैज्ञानिक है ना, Whether you appreciate the existence of soul or not is your personal स्वतंत्रता। लेकिन थोड़ा सा स्लीप मैनेजमेंट पर आप स्टडी करेंगे तो हमारी जो मन की फ्रीक्वेंसी है ना, अभी आप जागृत होकर सुन रहे हैं, बोल रहे तो वी आर इन बीटा, देन वी स्लोली गेट इन टू अल्फा, थीटा, डेल्टा। वेन वी आर इन द डेल्टा स्टेट ऑफ स्लीप, मेडिकल साइंस सेज अवर माइंड इज ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 to 1 to 2 cycles per second। और जब हम गहरी नींद पर आते हैं ना दोस्तों, हम सब ये शरीर का भान हम भूल जाते हैं। आज आप यहां पर बैठकर अगर सुनने की आपकी शक्ति है, ये कल रात में जब आप गहरी नींद पर गए थे, आप ये अशरीरी बन गए थे। डेफिन राज्योग देयर इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज कॉल्ड एज अशरीरी, हम शरीर को भी भूल जाते हैं। तो फिर आप लोग कहेंगे स्वामी भाई, अगर नींद इतना सुंदर गिफ्ट है तो ब्रह्मा कुमारी हमें 4 बजे क्यों उठाती है ना, हम सोते रहे भाई। गुड न्यूज माई डियर फ्रेंड्स, नींद से हमारे शरीर और मन को विश्राम जरूर मिलता है, लेकिन नींद से हमारी कमी कमजोरी, हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मन को एक अल्फा स्टेट पर लेकर आना पड़ता है। अल्फा स्टेट कब होता है? सपोज आपको 6 बजे उठना है या 5:30 बजे उठना है तो हमारा अलार्म लगाते हैं, और जैसे ही अलार्म 5:30 बजे उठता है तो हम क्या करते हैं, हमारे वो पुराने संस्कार जागृत होते हैं। तक 10 मिनट के लिए सोता हूं, 10 मिनट के लिए सोता हूं, और 10 मिनट हमको बहुत आनंद देता है। एक ऐसी अवस्था जहां पर हम सोए भी नहीं है तो जागे भी नहीं है, दैट्स कॉल्ड एज एन अल्फा स्टेट। और उस स्टेट पर हमारा मन पता कैसे होता है, एक छोटे से बच्चे की तरह, स्मॉल चाइल्ड। आप सभी वैज्ञानिक हैं, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप हर सेशन सुनते हैं ना, मैं भी ऐसी करता था। सो आई एम टेलिंग माय ओन स्टोरी। 28 years बिफोर जब भी बहनें बैठकर मुझे कुछ सुनाते थे ना, मैं अपने इंटेलेक्चुअल विजडम, अपने बिलीफ सिस्टम से बस उनको एक्सेप्ट करता था, नहीं तो रिजेक्ट करता था। आई वॉज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ अ जज। नहीं, वेजिटेरियन भोजन क्या, नॉन वेज में प्रोटीन्स मिलता है, ये वो हमारा बिलीफ सिस्टम। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, 3 दिन आप अपने बाबा के घर आए हैं, ईश्वर परमात्मा के घर आए, बच्चे बन के बैठिए, स्वतंत्र होकर सुनिए। कैन वी हैव एन ओपन माइंड टू लिसन टू समथिंग? चर्न करिए बाद में, फाइंड आउट द एविडेंसेस, दैट्स द वर्क दैट वी साइंटिस्ट डू। खुला मन, स्वतंत्र मन। इसलिए जब आप राजयोग कराते ना, अभी दीदी दीदी कराएंगे तो एक लाइट म्यूजिक बजा देते हैं, तो लाइट म्यूजिक जब बजता है तो आपका मन धीरे से एक अल्फा स्टेट पर पहुंचता है, दैट इज राजयोग। अब वहां पर हमारे संस्कार जो होते हैं वो शक्तिशाली और है ना शुद्ध संस्कार बनने लगते हैं। द थर्ड क्वीन, तीसरी रानी कौन सी है? तीसरी रानी है हमारा क्वालिफिकेशंस एंड डेजिग्नेशंस। जैसे आज मैंने भी अपना जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया तो मैंने भी अपना लंबा चौड़ा है ना बहुत सारे अपने डिग्रीज लिखे थे, और हम जहां पर भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो अपना डिग्रीज बोलते फिरते घूमते हैं। लेकिन इस विद्यालय में आया तो मैंने ये महसूस किया कि अभी तो स्वामी भाई बहुत सारे डिग्रीज हैं, लेकिन अगले जन्म में फिर से आपको ए फॉर एप्पल पढ़ना ही पड़ेगा। आई हैव टू लर्न ए फॉर एप्पल वंस अगेन। सो द मोर इंटेलेक्चुअल वी आर, द मोर हम्बल वी शुड बिकम। The classic example is none other than Dr. Kalam sir. Last time when I met him was in 2014. He passed away in 2015. I was doing one of my presentations in that international conference. Aur hame bataya gaya, the comparer was telling us ki Dr. Kalam had more than 30 PhD degrees to his credit. To agar hame Dr. Kalam ko address karna ho to kaise address karenge? Doctor, 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 doctor. 30 vrasham parendi virum, 30 times. But we found with his aura, the way he used to interact, so simple, so humble. 30 PhD degree माथे पर लिख के चलते क्या? नहीं, जब भी आप किसी से मिलते हैं ये बहुत important करना बहुत बहुत जरूरत है। So it's not important of our qualification and designation, the way people would love to remember, the way we remember Dr. Kalam sir even today, right? So that's what is very very important. The second queen, जब भी हमारे जीवन में कोई चुनौती होती है तो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव से बात करते हैं, राइट? 2022 का जो नोबेल प्राइज जो मिला था, इट वॉज इन क्वांटम मैकेनिक्स, राइट? क्वांटम मैकेनिक्स 3 साइंटिस्ट को मिला था, एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटन जेलिंगर। इन्होंने एक बहुत सुंदर उन्होंने एक काम किया क्वांटम मैकेनिक्स में। उन्होंने कहा दो फोटॉन्स, इफ दे आर इलेक्ट्रॉनिकली पेयर्ड विथ ईच अदर, अगर एक फोटोन को आप यहां पर रखोगे और एक फोटोन को आप कहीं पर भी लेकर जाइए, ये फोटोन जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा वही फ्रीक्वेंसी पर वो फोटोन विच इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी। आई शो यू द स्लाइड। व्हाट हैपेंस टू वन ऑफ द पार्टिकल्स इन एन एंटैंगल्ड पेयर डिटरमिन्स व्हाट हैपेंस टू द अदर पार्टिकल इवन इफ दे आर फार अपार्ट। अ फिनोमेना कॉल्ड क्वांटम टेलीपोर्टेशन विच मेक्स इट पॉसिबल टू मूव अ क्वांटम स्टेट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एट अ डिस्टेंस, राइट? तो अगले 3 दिन अगर आप यहां पर बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं तो आपके जितने भी क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी। आप में से कितनों को अपने बच्चों से और पोत्रों से पोत्रियों से बड़ा प्यार है, मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। हाँ, तो 3 दिन यहां बैठकर मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा, और जाकर फिर उनको क्वांटम मैकेनिक्स समझाइएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माई सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति भी अगर हमको ग्रेटिट्यूड रखना है, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ये जन्म जन्मांतर का कार्मिक अकाउंट है दोस्तों। ऐसे ही नहीं कि पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं, वी हैव मेट बिफोर ऑल्सो, वी शेयर अ रिलेशन, वेदर यू आर फ्रॉम इंडिया, वेदर यू आर फ्रॉम द स्वीट कंट्री ऑफ नेपाल, हम भले देश अलग अलग है लेकिन हमारा एक कार्मिक कनेक्शन है. आई एम वेरी हैप्पी टू टेल माई गुड फ्रेंड्स ऑफ नेपाल दैट आई एम विजिटिंग काठमांडू मोस्ट प्रॉब्ली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड मे बी इन द थर्ड वीक ऑफ सेप्टेम्बर. आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट. और मुझे नेपाली लोग बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि वहां का नेपाली टोपी जब मैं पहनता हूं ना तो मेरी सुंदरता थोड़ी बढ़ जाती है. यस यस. नेचर नोज नो बाउंड्रीज. स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो कनेक्ट पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री. माई सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट है, अक्सर करकर हम अपने फैमिली मेंबर्स को वी टेक देम फ्रॉम ग्रांटेड. जब बाहर वाले कोई आते तो बड़े मधुरता से बात करते हैं लेकिन अपनों से हम कैसे बात करते हैं. इसलिए माई सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट इज डोंट गेट एंग्री विथ योर क्लोज्ड वंस. मोर देन एक्सटर्नल कस्टमर्स व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज द इंटरनल कस्टमर्स. मैं बहुत स्कूल्स में जाता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लास्ट ईयर केंद्रीय विद्यालय का प्रोजेक्ट था. हर स्कूल में जब मैं गया तो बाहर एक बोर्ड देखा और बोर्ड पता क्या देखा? एंगर फ्री जोन. एंगर फ्री जोन दिस इज वन ऑफ द, मुझे एक इमेज में ढूंढ रहा था, लेट्स मेक अवर स्कूल एंगर फ्री. और हर स्कूल में बच्चे अलग अलग चित्र बनाते हैं. और एंगर का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. गुस्सा आ रहा मतलब हमने ग्रेटिट्यूड को भूल गए हैं. मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है व्हेन आई वाज अ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी. मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता था व्हेन माय स्टूडेंट्स कम लेट इन माय क्लास. तो मैं एकदम भड़कता था, व्हाई डिड यू कम लेट? Punctuality, discipline, very important in your life. How will you become an effective engineer? जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तो मैंने महसूस किया anger is a sign of weak mind. और यहां मैं बहुत डॉक्टर्स का प्रोग्राम अटेंड किया तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा, स्वामी भाई गुस्सा इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ. मैं कहा, डॉक्टर साहब मुंबई के बच्चे सर पर चढ़कर बैठते हैं, दो लगाते नहीं तो सुधरते नहीं है. और बोलते बोलते डायलॉग बोल दिया, डॉक्टर साहब आपने सुना नहीं है, लोहा लोहे को काटता है सर. तो डॉक्टर साहब मुस्कुराते मुझसे पूछे, आपने क्या पढ़ाई किया? मैं कहने के लिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है. बोला, फिर स्वामी भाई आपने मेटलर्जी नहीं समझा. हमने कहा, आप समझा दीजिएगा. तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी भाई लोहा लोहे को काटता है लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है. ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है. फिर मैं जैसे ही सुनकर जाने लगा तो डॉक्टर ने कहा, हेलो स्वामी, गुस्सा करना या नहीं करना यह आपका स्वतंत्रता है, लेकिन गुस्सा करोगे ना तो हार्ट अटैक होने के चांसेस है. नाउ यू टेक अ डिसीजन. उसके बाद जब मैं क्लास में गया, जैसे ही मेरे स्टूडेंट्स लेट आने लगे ना, पता मैं क्या करने लगा? बड़े प्यार से अपना हाथ दिल में रखता था और जो डायलॉग गुस्से से बोलता था बड़े प्यार से बोलने लगा, माई डियर बॉय वाई डिड यू कम लेट? पंचुअलिटी डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? मेरे सारे स्टूडेंट मुझे घूर के देखने लगे और कहे, सर जब से आप माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी इसमें गए आप सुधर रहे हो सर. करिए मेडिटेशन करिए सर, यू आर बिकमिंग गुड प्रोफेसर. जब ये सर्टिफिकेट अपनों से मिलता है ना, बड़ा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई गिव यू अ गिफ्ट, घर में जाकर अपने बच्चों को जरूर देना. एंड दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ फैमिली. सभी बोलिए फादर. जोर से बोलो. अरे भाई पहले बच्चों को डरा दिया फिर अपने बापूजी को डराते. प्यार से बोलो ना फादर. और थोड़ा प्यार मोहब्बत भरो. फादर एंड मदर आई लव यू. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके द फर्स्ट क्वीन राइट जो हमेशा हमारे साथ चलती है, यानी गेस आत्मा रूपी राजा आने वाले कई जन्मों में क्या चीज लेकर जाएगी? आप लोग तो बड़े इंटेलेक्चुअल है, बताइए. हाँ अरे वाह, यू आर वेरी बुद्धिशाली. यस आवर फर्स्ट क्वीन एंड दैट इज हमारे संस्कार, हमारे कर्मास और हमारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद. इस पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. एंड दिस टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल डिवाइन संस्कार इज कॉल्ड एज मेडिटेशन. आई जस्ट टेक टू और थ्री मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिटेशन. I had a chance to visit many atomic power stations. और जब भी मैं जितना भी atomic power station में गया हूं तो जब मैं atom के बारे में बोलता हूं तो वहां के वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा लगता है. और आजकल का न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी ये है, last I visited was Madras atomic power station. तो माई गुड फ्रेंड द स्टेशन डायरेक्टर सुधीर सर, नाउ इज बिन प्रमोटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्टेड इन मुंबई लास्ट वीक. तो कहते थे, स्वामी भाई ये गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी ब्यूटीफुल हो गई, आजकल हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और एटॉमिक पावर स्टेशन के ऊपर खड़ा कर देते हैं और फिर उनसे बोलते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली सेफ, इट्स एब्सोल्युटली सेफ. तो वहां के वैज्ञानिकों से मैं पूछा कि एटम को कभी आपने देखा है? बोला नो,
But we appreciate the power of the atomic power station. तो एटॉमिक पावर स्टेशन में पावर जनरेट कैसा होता है, हम सभी को पता है. एटम को जब न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, इट रीचेस अ क्रिटिकल मास एंड देयर इज अ चेन रिएक्शन. सेम थिंग, आत्मा इज द एटम, परमाणु परमात्मा द न्यूट्रॉन, उनसे जब हम मन बुद्धि से जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव डिवाइन संस्कार आता है. और जैसे कल अंजलि बहन इनॉग्रेशन रिसेप्शन में बता रहे थे, धीरे धीरे इट विल क्रिएट अ चेन रिएक्शन. हम सारी दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हर सितारे की अपनी एक दुनिया होती है. दिस इज हाउ एन एटॉमिक पावर स्टेशन वर्क्स. आप यहां पर आए हो, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एन हाइड्रोलिक पावर स्टेशन. हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में क्या करते हैं, पानी में अपने में शक्ति नहीं होती है, पानी को एक पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, एक हाइट देते हैं और वहां से पानी को छोड़ते हैं. पानी इतनी तेजी से आता है, द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक हाइड्रोलिक मैकेनिकल एंड इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. I had a chance to visit the Tehri Dam sometime before. तो मुझे बताया गया था वो पानी जब ऊपर से नीचे टर्बाइन पर हिट करती है, it generates an electricity of more than 2000 megawatt per second. Per second. ठक करके एनर्जी. And it gives electricity to 7 राज्य including Delhi, UP, etc. Right? पानी में अपनी ऊर्जा नहीं है, लेकिन पानी को ऊपर उठाओ. उसी तरह मन बुद्धि को अब यहीं पर हम भटकाते रहेंगे तो उसमें शक्ति आत्मा में नहीं आएगी. मन बुद्धि को धीरे से ऊपर उठाओ. आज से आप धीरे सीखने लगे, जब परमात्मा का परिचय मिलेगा तो राजयोग इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, मन और बुद्धि की एक सुंदर सी यात्रा है. मैं चाहूंगा आप यहां पे ज्ञान सरोवर में आए हो तो यहां का सोलर सिस्टम देखिएगा, और जब नीचे शांतिवन में जाएंगे तो ब्रह्मा कुमारी वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी. उसका मैं फोटो आपको दिखाता हूं. इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मा कुमारी सोलर वन पावर प्लांट एंड यू कैन सी दिस इन द स्लाइड. हमारे सारे जो वहां सोलर जो चैनल्स होते हैं, डिस्क होते हैं, तो ये सोलर जो है ना ऑटोमेटिक सिस्टम पर बनता है. जो डाइनिंग के एकदम ऊपर में भी अभी कभी टाइम मिलेगा तो आप जरा चक्कर जरूर मारिएगा. तो वो क्या करता है, जैसे जैसे सूर्य ये सूरजमुखी की तरफ फ्लावर की तरफ वो घूमता रहता है तो सूर्य का प्रकाश उस सोलर डिस्क पे पड़ता है, धीरे स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. राइट? और आप यहां पर देखेंगे कि ये जो हमारा सोलर पावर प्लांट है, साथ साथ में सोलर पैनल्स हैं, और हर सोलर प्लांट के नीचे हम लोग वेजिटेशन भी करते हैं. And it's a very wonderful mechanism. Some of the IIT students also from Mumbai, they come here and they do their PhD. So main chahunga ki aap apna schedule is tarah se banaiyega ki jaane ke pehle aap zarur and isko aap dekhkar zarur jaiyega. So what is the source of power? And that's the Almighty. To yahi baithe rehna hai, man aur buddhi se aapko upar ki taraf jana hai. And jab aap ye karoge to aap charo taraf se ek suraksha ka kavach aapka ban jayega. So, I wish you all the best in this particular conference and I am sure कि आप जितना gratefulness को महसूस करोगे चार रानियों के साथ जब आप justice करोगे तो in the years to come you will be healthy, wealthy and you will certainly enjoy a life full of happiness. So, let's take a couple of minutes to do this process of meditation. मैं गिरिजा बहन जी को request करता हूँ. We started perfectly on time 9:30 we started. We have got 3 minutes. We'll perfectly wind it up at 10:30. Right? So, 2-3 minutes, humari Girija Bhai meditation karenge. And then we wind up. Thank you very much. Om Shanti.
Bohat bohat dhanyavad humare Swaminathan Bhai ji ka. Kam samay mein bohat sari baatein humare saamne rakhi. Abhi hum log thodi der ke liye meditation karte hain. Phir uske baad inaugural session hoga. जैसे कि आप सब मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, मोबाइल को बात करते हैं, है ना, वीडियोग्राफी करते हैं, बहुत कुछ हम कार्य करते हैं मोबाइल से. लेकिन अगर हमने मोबाइल को सवेरे चार्ज नहीं किया तो हम सारे दिन में कुछ भी नहीं कर सकते. तो उसी प्रकार से सारी बातें हमने सुनी और हम इस बात को रियलाइज भी करते हैं कि हमारे अंदर जो चीज नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर शक्ति की कमी है. वो शक्ति आएगी मेडिटेशन से. आप मेडिटेशन करेंगे जो चाहे आप कर सकते हैं. हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, सभी सीधे होकर के बैठेंगे. ओम शांति. कुछ समय के लिए अपने मन को एकाग्र कर लीजिए. अंतर्मुखी होकर अपने मुख को देखे, मैं कौन हूं? अभी हमें पता चला कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, और मैं आत्मा अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट स्टार की तरह हूं। यह शरीर का एक एक ऑर्गन और मन बुद्धि संस्कार कि मैं मालिक हूं। मैं आत्मा राजा, मन मेरा मंत्री की तरह, यह कर्मेंद्रिय कर्मचारी की तरह है। मैं परम शक्ति ऑलमाइटी परमात्मा की संतान हूं। जब हमारे अंदर हम इस बात को स्वीकारते हैं कि मैं परम शक्ति परमात्मा की संतान हूं, तो धीरे धीरे जो परमात्मा के अंदर जो परमात्मा गुणों का सागर, शक्तियों का सागर है, वो सारी शक्तियां, सारे गुण मेरे अंदर आने लगते हैं। स्वयं भरपूर महसूस करते हैं। जब हम परमात्मा की संतान बच्चा समझकर बैठेंगे, हमें किसी से भी शिकायत नहीं होगी। क्योंकि मैं परमात्मा के अधिकारी बच्चा हूं। आप अधिकार से परमात्मा से ले सकते हैं। इसलिए अभी हम दो तीन दिन इस कॉन्फ्रेंस में संकल्प लेकर के चलते हैं, मुझे किसी से भी शिकायत नहीं करनी है, थैंकफुल रहना है, जो भी लेना है परमात्मा सागर है, मुझे उनसे लेना है, और सभी को देते जाना है। देने की भावना जागृत करते हैं। यही मेडिटेशन, यही राजयोग है। हम इस राजयोग को जीवन का अंग बना लें। जिस प्रकार से भोजन हम करते हैं, उसी प्रकार से मन का, आत्मा का भोजन यह राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इनॉग्रल सेशन को शुरू करते हैं। ओम शांति।